आप हैं SBS हिंदी के साथ।
मेलबर्न का होटल कर्मचारी पाया गया यूके स्ट्रेन से ग्रस्त। उत्तराखंड त्रासदी पर योगी आदित्यनाथ ने की उच्च स्तरीय बैठक और चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हालत बेहद खराब। अब खबरें विस्तार से। फेडरल स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट फरवरी के अंत तक ट्रैक पर रहेगा, लेकिन इसके लिए एक सटीक समय रेखा अभी तैयार नहीं है। फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक आने वाले हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगी। ये योजना ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ष के अंत से पहले फाइजर वैक्सीन की 20 मिलियन खुराक साप्ताहिक प्रसव में प्राप्त करने के लिए है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर पॉल कैली का कहना है कि इस अनुसूची का उद्देश्य टीका बर्बाद करने से बचना है।
We don't want a lot of vaccine sitting around in warehouses, so we'll be looking to roll out particularly for those most those priority populations that people all know about now as soon as we can. But then on the third week, we'll be going back to those same people to give them their second dose. Particularly with the Pfizer, that's really important, that 3-week interval.
प्रोफेसर पॉल कैली ने यह भी कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अप्रूवल के लिए थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है।
That is continuing to progress through the approvals process with the TGA. This is a very good vaccine. It's very safe. And once it goes through those processes of safety, quality and efficacy, we will be able to then to look to roll out that vaccine as well, subject of course always to the TGA advice.
विक्टोरियन सरकार अपनी होटल संगरोध प्रणाली में सुधार कर रही है, जिसमें अब 16वें दिन आपको कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, जो कि 14वें दिन के 48 घंटे बाद होगा। कार्यक्रम के अन्य अपडेट में छुट्टी के दिन स्टाफ का टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ मेहमानों के भोजन के तरीके में भी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव मेलबर्न में एक होटल कार्यकर्ता की जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद संक्रमित पाए जाने पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कार्यकर्ता यूके स्ट्रेन से ग्रस्त पाया गया था। इसके बाद उसके 8 करीबी संपर्क और 136 संपर्क जिनके साथ वो काम करता था, उन्हें एकांतवास में भेज दिया गया है। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज का कहना है कि परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक ऑक्यूपेशनल फिजिशियन होटल के कमरों में एयरबोर्न ट्रांसमिशन के खतरे की जांच कर रहा है।
We've had engineering reviews of all the air conditioning systems in all the hotels that we use. We've ripped out the air conditioning in a number of these places and put new systems in. We've changed the way air flows. We rip up the carpet in all the common areas. No one else does this. There's 50 other points where we do things differently, sometimes significantly differently, sometimes it's a smaller thing. But when you add all that together, it's a very risk-averse model, and I can't rule out further changes.
इस बीच राज्य के होटल संगरोध में एक लौटे यात्री को इंटेंसिव केयर में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में अब 50 से भी कम सक्रिय मामले हैं। न्यू साउथ वेल्स में भी अधिकारी होटल संगरोध में कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब 14 दिन एकांतवास में बिताने के बाद विदेशों से वापस आए यात्रियों को 16वें दिन एक अनिवार्य कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ये बदलाव 14 दिन होटल एकांतवास खत्म करने के बाद विदेश से लौटे यात्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद किए गए हैं, जिसमें संक्रमण के स्रोत की जांच अभी भी चल रही है। वैसे राहत की बात यह है कि राज्य में अभी भी कोई स्थानीय कोरोना मामला सामने नहीं आया है। बिना किसी स्थानीय मामले के न्यू साउथ वेल्स में यह लगातार 23वां दिन है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जेरेमी मैकनल्टी का कहना है कि परीक्षण दरें अभी भी बहुत कम हैं।
There were 7,315 tests reported to 8 o'clock last night, compared to the previous day's total of 11,399. We urge people who have any cold-like symptoms, such as a fever, cold, sore throat or runny nose, to please get tested immediately and isolate until you receive a negative result.
Queensland सरकार युवा अपराधों से निपटने के लिए विरोधी अपराध कानून को मजबूत कर रही है और युवा अपराधियों के लिए जमानत प्रक्रिया को सख्त। इन बदलावों में अब माता पिता से मजबूत आश्वासन के साथ साथ ये भी साबित करना होगा कि अपराधी बेल के योग्य क्यों हैं। प्रीमियर एनास्तासिया प्लाशे का कहना है कि चाकू जैसे हथियारों को खोजने के लिए पुलिस के पास युवाओं को चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर रखने की भी शक्ति होगी।
So there will be no ifs or buts. The fundamental principle of youth justice must be to protect the community from recidivist offenders, and we will write that into law.
आपको बता दें कि ये सुधार पिछले महीने ब्रिस्बेन दंपत्ति और टाउन्सविल के मोटरसाइकिलिस्ट के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद किए जा रहे हैं। ई सेफ्टी कमिश्नर के शोध से पता चलता है कि टीनेजर्स दिन में औसतन 2 घंटे ऑनलाइन बिता रहे हैं, लेकिन 10 में से 2 टीनेजर्स को अवांछित सामग्री दिखाई जा रही है। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि टीनेजर्स 4 सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करते हैं और अधिकांश अपने बुरे ऑनलाइन अनुभवों के बाद भी सकारात्मक संबंध बनाना चाहते हैं। टीनेजर्स को जो अनुचित सामग्री भेजी जा रही है उसमें पोर्नोग्राफी या हिंसक सामग्री भी शामिल है। ई सेफ्टी कमिश्नर जूलियन इनमान ग्रांट ने एबीसी को बताया कि युवा लोग अपने जीवन का अधिकांश भाग ऑनलाइन जी रहे हैं।
1 in 3 have been contacted by a stranger online. Now that's up from 1 in 4 in 2017. Certainly, COVID supercharged everything where the internet is concerned, so we saw more kids spending time online.
आपको बता दें कि ये रिपोर्ट दुनिया भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के साथ यानी कि 9 फरवरी को सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया सहित 57 देशों की आलोचना की है क्योंकि लगभग 10,000 महिला और बच्चे विदेशों से वापस नहीं लाए गए हैं और वो अभी भी सीरियाई शरणार्थी शिविरों में हिरासत में हैं। संयुक्त राष्ट्र लगातार सरकारों से अपने नागरिकों को घर लाने का आग्रह कर रहा है, साथ ही साथ संभावित रूप से युद्ध अपराधों के लिए वयस्कों पर मुकदमा चलाने की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया लिंक वाली 57 महिलाएं और बच्चे भीड़भाड़ वाले शिविरों में फंसे हुए हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स के प्रतिनिधि फियोना ली ओएन का कहना है कि सभी 57 देश अब लिस्ट ऑफ शेम में हैं।
The states who are not bringing large numbers of their nationals home, or states who literally have a handful of nationals on this list. Those states are on a list of shame because they can do better.
अब खबरें भारत से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात लखनऊ में अपने आवास पर चमोली ग्लेशियर फटने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस विपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है।
चमोली जनपद में हुई आपदा के संदर्भ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब, एसीएस माननीय मुख्यमंत्री जी, एसीएस राजस्व, सिंचाई विभाग के ईएनसी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, हम लोग सभी गृह विभाग के अधिकारी और राहत आयुक्त बैठक में उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का भी जो है हमें निर्देश दिया। उन्होंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से भी वार्ता की है।
भारत में कोरोना टीकाकरण तेजी से चल रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों का टीकाकरण करने वाला सबसे तेज देश बन गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन अग्नानी ने बताया कि भारत ने यह आंकड़ा यूके और यूएस से भी तेज हासिल किया है।
सो विद दिस इन लास्ट 24 डेज वी हैव डन 6 मिलियन। वी आर द फास्टेस्ट कंट्री टू रीच 6 मिलियन वैक्सीनेशन टारगेट। यूएसए डिड इट इन 26 डेज एंड यूके इन 46 डेज। 60 लाख का लक्ष्य प्राप्त करके 24 दिन में हमने ये उपलब्धि हासिल की है, जो सबसे तेज रफ्तार है।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56 रुपये 31 पैसे और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 77 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड और भारत के बीच चल रहे चेन्नई टेस्ट में भारत की हालत काफ़ी ख़राब है। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भारत के सामने एक बेहद मुश्किल 420 रन का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा सहित पूरा टॉप ऑर्डर पवेलियन वापस जा चुका है। भारत के लिए इस मैच को बचाने की उम्मीद अब बहुत कम है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 95 रन से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 370 रन के लक्ष्य के सामने दूसरी पारी में 274 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर हसन अली ने अपनी तेज गेंदबाजी से कमाल किया और 5 विकेट लेने में सफल रहे। अब डालते हैं मौसम पर नजर। अब बात करते हैं कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बढ़िया धूप रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आपको बादल देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मौसम उमस भरा रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां आसमान में हल्के बादल रहेंगे। यहां के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, जहां बारिश की गुंजाइश बहुत कम है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है, तापमान रहेगा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।